अगर जरा देर को हम भी अपने जी उठने का तसव्वुर करें तो सोचें किस हालत में वो दोबारा उठेंगे, क्योंकि एक जिंदगी और एक मौत हम देख चुके हैं, अब एक मौत और एक जिंदगी बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर कहेंगे अल्लाह हम मान गए, अगर ये दुनिया में कहा होता ना अल्लाह हम मान गए, अल्लाह हमने गलतियां की हैं, अल्लाह हमने गुनाह किए हैं, तो कुछ इनका बन सकता था, लेकिन अब मान रहे हैं तो फहल इला खुरूज मिन सबील, अल्लाह कोई निकलने की तरफ रास्ता है, यानी इस जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता है? क्या रास्ता हो सकता है? या तो हमें एक दुबारा दोबारा जिंदगी दे दे कि हम जाएं और नेक अमल करें, फरियादें कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, अल्लाह हम मान गए, अल्लाह हम मान गए। एक दफा तो उस वक्त भी कहेंगे जब हशर में होंगे, और जहन्नुम में जाके भी कहेंगे कि अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दे दे। अब जब पहले कह रहे थे वो भी एक तड़प के कहना था, लेकिन जिस वक्त जहन्नुम में जाके फरियादे करेंगे ना, तो बहुत तड़प के कहेंगे अल्लाह बस एक दफा कोई रास्ता है, कोई एनी वे, एनी पॉसिबल वे कि हम यहां से निकल सके। ये वो पछतावा है ना, बस हमें निकाल ले अल्लाह, हमने बस गलत कर दिया, इतराफ भी अपने गुनाहों का। देखो आज अल्लाह ताला फरमाता है मैं काबिल तौब हूँ, मैं गाफिर जम्ब हूँ, लेकिन इंसान नहीं मानता, मैं जिद तौल हूँ लेकिन इंसान तौबा की तरफ नहीं आता। उस दिन कहेगा भी तो तौबा कबूल नहीं, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका, वो दुनिया में था, जब तक ये सांस चल रही है तब तक है, जब सांस खत्म हो गई तौबा का दरवाजा बंद हो गया। तो वो एतराफ कर भी रहा है, फरियादे कर भी रहा है, रो भी रहा है, मिन्नतें भी कर रहा है, अल्लाह तेरी कुदरत को भी मैं पहचान गया, तूने मौत दी, तूने जिंदगी दी, फिर कोई रास्ता है? मगर कोई रास्ता नहीं, अब कोई रास्ता नहीं, अब ना तो दोबारा जिंदगी मिलनी है कि वापस चले जाएं, क्यों नहीं मिलनी? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पता है कि ये दोबारा यही करेंगे, ये अब गुनाहों के ऐसे आदी हो चुके हैं कि दोबारा वहीं जाके फिर वही भूल जाएंगे, फिर वही काम शुरू कर देंगे। और वाकई इंसान को इसी जिंदगी के अंदर कई दफा मौके मिलते, ठोकरें लगती हैं, इतना जोर से झुंझोड़ा जाता है फिर भी बाज नहीं आता, मौत के करीब जाके अल्लाह ताला उसको वापस ले आता है। उस वक्त के लिए तो थोड़ी देर के लिए डरता है, बहुत डरता है, उसके बाद फिर वही रामधाम, बीमारियां आती हैं, किसी प्यारे की जुदाई आ जाती है, बहुत कुछ आता है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं जो उसको बहुत कुछ समझाने के लिए काफी होते हैं, फिर भी थोड़ी देर समझा उसके बाद फिर वही डगर। तो अब इसको वापस भेज देंगे तो अभी ये इतनी मिन्नतें कर रहा है, इतना रो रहा है, अब वापस जाएगा फिर यही करेगा। तो अब वो कह रहा है कि मुझे निकालें कोई रास्ता हो या कोई और ही रास्ता हो, कोई भी रास्ता नहीं। अल्लाह अकबर। ज़ालिकुम बि अन्नहु इज़ा दुअ अल्लाहु वहदहु कफरतुम। ये इसलिए, ये क्यों है, कोई रास्ता क्यों नहीं है इसके लिए, और ये ऐसी सजा इसको क्यों मिल रही है, और इसकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही? इसलिए कि जब इसको बुलाया जाता था, पुकारा जाता था एक अल्लाह की तरफ अकेले, वहदहु कफरतुम, तुमने कुफर किया, वही युशरक भी तो मीनू, और जब शिर्क किया गया साथ उसके, अल्लाह ताला के साथ जब शिर्क किया गया तो तुम मान गए, उसके ऊपर ईमान लाते थे शिर्क पे, लेकिन एक तौहीद को मानना तुम्हारे लिए मुश्किल था, तौहीद पे आना मुश्किल था, साथ जरूर कुछ ना कुछ जोड़ने हैं, नहीं जी ये भी और नहीं जी वो भी और जी फलां भी और उसकी भी चलती है अल्लाह के आगे, और वो भी बचा लेगा और वो भी कर लेगा और उसका दामन भी पकड़ लेंगे, और वो गौसे आजम और वो पीर साहब और वो फलां और वो इतना कुछ जोड़ा हुआ, एक अल्लाह काफी नहीं क्या तुम्हारे लिए? वो तो शिर्क करते ही करते हैं, और जो मुसलमान होके शिर्क करे कि उसको भी एक अल्लाह काफी नहीं लगता, उसको भी साथ किसी को मिलाना है। फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, तो फैसला अल्लाह ही का है जो बुलंद है और बहुत बड़ा है, हर फैसला अल्लाह का है, जो उस दिन भी फैसला करेगा वो भी वो ही फैसला करने वाला है, और उसी का फैसला बरहक होगा। और जो दुनिया में भी जितने फैसले हैं तकदीर के, वो भी वही करता है। और जो भी कायनात में जितने चीजें चेंजेस हो रही हैं, जो भी अमलियात हो रहे हैं, वो सब अल्लाह के फैसले हैं। वो अली है, अली उलूव से, जो जात बुलंद है, बुलंद अपनी जात में भी और सिफात में भी, अपने मर्तबे में भी, अपने मकाम में भी, अपनी अजमत में भी, अपनी तमाम सिफात में वो बुलंद है। और कबीर बुजुर्गी वाला, अजमत वाला, वो अल्लाह यूरी कुमायाती, वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां, वो अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। कौन सी? अल्लाह ताला की दो तरह की निशानियां हैं, कौनी और शरई। कौनी कौन सी? जो कायनात में फैली हुई जितनी निशानियां, आसमान देख लो, जमीन देख लो, हमारे अपने जाने देख लो, हमारे अंदर जो आजाद चल रहे हैं वो देख ले, जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर, कैसे हमारा सिस्टम चल रहा है। इर्द गिर्द अपने देखो, जमीन में चरिंद परिंद पौधे, जितनी ये चीजें अल्लाह की निशानियां हैं, शरई आयात भी है, ये कुरान की आयात शरई आयात है। अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां। कहीं कोई दुनिया से जा रहा है, कहीं कोई दुनिया में आ रहा है, ये सिलसिला चलता जा रहा है, ये क्या निशानी नहीं है? अच्छा बलता भला उठता बैठता बोलता चालता इंसान, उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्या चीज हो गई उसको? ये निशानी नहीं है? एक अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाता है, वो बिस्तर पे पड़ जाता है, जो कल तक बड़ा अपने आप को ताकतवर समझता था, भागता फिरता था, लड़ता फिरता था, अब देखो कैसे हो गया, क्या ये निशानी नहीं है? ये क्या निशानियां नहीं है अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है? और ये आयात है जो कुरान की है, ये भी अल्लाह की निशानियां है। और वो युनज़्जिलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़, और आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क उतारता है, यानी बारिश, बारिश उतारता है जिससे रिस्क उगता है। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, लेकिन नसीहत सारे नहीं पकड़ते, नसीहत वही पकड़ता है जो रुजू करने वाला, अल्लाह की तरफ इनाबत करने वाला, यानी अल्लाह ताला की तरफ पलट के आने वाला। यानी किस तरह से गफलत से, गफलत को छोड़ के अल्लाह की तरफ पलट आए, उसके जिक्र की तरफ, कुफर को छोड़ के तौहीद की तरफ आ जाए, जिद को छोड़ के अल्लाह ताला के आगे आजी कर ले, इनकार को छोड़ के अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाए, उसी को नसीहत मिलेगी, सबको नहीं मिलती। यानी इसका मतलब है, अगर आपने नसीहत लेनी है इसे, और भी जगहों पे और क्राइटेरियाज भी बताए गए हैं, मसलन है कि नसीहत उसको मिलती है जो अल्लाह से डरने वाला होता है, नसीहत वो उसको मिलती है जो आखरत पे ईमान रखने वाला होता है, नसीहत उनको मिलती है जो अकल वाले होते हैं, तो बहुत सारी बातें बताई गई। यहाँ पे बताया गया नसीहत उसको मिलती है जो अल्लाह ताला की तरह रुजू करने वाला होता है। अब आप कहेंगे तो तौबा भी तो पलटना था, मुनीब भी पलटना है, तो फिर क्या फर्क है? जो अल्लाह से हया करने की वजह से उसकी तरफ पलटता है ना, मुझे अल्लाह से हया आती है, शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो है मुनीब। युनीब उसी से है, मुनीब वो बंदा जो इनाबत करता है, और ताइब वो है जो अल्लाह के डर से, उसकी नाराजगी के डर से उसकी तरफ पलटते। फदउल्लाह मुखलिसीना, अल्लाह ताला को पुकारो, उसे दुआ करो। और दुआ जो पुकार है, एक तो आप है ना निदा, उसमें भी हमने कहा पुकार, दुआ जो है उसमें मांगना भी होता है और वो इबादत भी होती है। निदा जो होती है बस पुकार होती है, वो कोई किसी किस्म की भी पुकार हो सकती है। तो दुआ में मांगना होता है और इबादत भी है दुआ। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला को पुकारो खालिस करके, यानी सिर्फ उसको अकेले को पुकारो, जब उसको पुकारो तो बीच में किसी को लेकर ना हो, लहु दीन, उसके लिए दीन को खालिस करो। दीन को उसके लिए खालिस करना क्या है, दीन का मतलब क्या है? एक तो खालिस करने का मतलब होता है पाक साफ करना, ठीक है, दीन का मतलब क्या है? दुआ भी मुराद है इससे और अमल भी मुराद है। ये दुआ में उसके लिए सिर्फ खालिस उससे मांगो, और अमल भी खालिस उसके लिए करो, खालिस उसके लिए, कोई रियाकारी ना हो, किसी और का ना हो। ये नहीं हो कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई और आ गया तो आप अपनी नमाज अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि वो देख रहा है। ये शिर्के खफी हो गया ना, या शिर्के असगर जिसको कहते हैं। तो शिर्के अकबर से भी बचो, शिर्के असगर से भी बचो। आप ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की इबादत करे इसमें किसी को शरीक ना ठहरा है। अब सज्दे करने में तो हो सकता है किसी को शरीक ना ठहरा है, लेकिन दुआ करने में भी किसी को शरीक नहीं करना, अमल करने में भी किसी को शरीक नहीं करना कि अल्लाह ताला तो खुश हो जाए लेकिन साथ साथ फलां बंदा भी मेरे से खुश हो जाए और उसकी भी तारीफें मुझे मिल जाए। वलो करी हल क्या, चाहे काफिर इसको कितना ही नापसंद करेंगे। क्योंकि काफिर कहते थे कि आप अल्लाह को पुकारते हो ठीक है, लेकिन साथ हमारे बुतों को भी पुकारो, साथ इनके आगे भी सजदे करो। अल्लाह ताला को तो वो भी पुकारते थे, ये थोड़ी कहते थे कि अल्लाह को पुकारना छोड़ दो, वो भी अल्लाह को पुकारते थे, लेकिन कहते थे साथ साथ हमारे बुतों को भी खुश करो ना, इनके आगे भी माथा टेको। तो चाहे उनको बुरा लगता है कि आप अपना दीन अल्लाह के लिए सिर्फ खालिस कर लें, एक अल्लाह को मानना, चाहे उनको बुरा लगे उसकी परवाह ना करो, अपना अमल भी और अपनी दुआएं भी अल्लाह के लिए खालिस कर लो। रफी और दराजात, रफी बुलंद है और बुलंद करने वाला, वो खुद भी बुलंद है और बुलंद करता भी है। रफी में ये दोनों माने आ गए, दर्जात को वो खुद भी बुलंद दर्जों वाला है, बुलंदियों वाला है, जेल मारे जाता है ना बुलंदियों वाला, तो वो खुद भी बुलंदियों वाला है और बुलंद करता भी है दर्जे, जिसके चाहे दर्जे बुलंद करते। जोल अर्श, अर्श वाला है, क्योंकि अर्श अल्लाह ताला की बड़ी अजीम मखलूक है, इसीलिए मैंने अब बताया जोल अर्श अजीम, जोल अर्श करीम भी आता है। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं रफी और दराजात है, सात बुलंद आसमानों वाला, वो अपनी जात के लिहाज से भी बुलंद है। ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला हर जगह है अपनी जात के लिहाज से, नहीं, अब वो रफी और दराजात बुलंद दर्जों वाला है, वो ऊपर है, बुलंद है। और अपनी सिफात के लिहाज से भी बुलंद है, और अर्श का मालिक है अल्लाह ताला ने अर्श को अपने हाथ से पैदा फरमाई। चार चीजें हैं ना जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया, बाकी सब चीजों को कलमा कुन से पैदा फरमाया। वो चार चीजें कौन सी? अर्श है, कलम है, आदम अलैहिस्सलाम है, और जन्नत आदम, जिसका मैंने आपको बताया कि जन्नत आदम भी एक जन्नत। तो अर्श जो है इतनी अल्लाह ताला की बड़ी मखलूक और अजीम मखलूक है। युल्की रूह मिन अम्री अला मन यशाउ मिन इबादी, वो जिस पे चाहता है अपने हुक्म से रूह को नाजिल करता है, डालता है अपने बंदों में से। रूह से मतलब यहाँ पे क्या है? रूह वैसे हम देखते हैं, रूह तो हम इंसान की रूह को रूह कहते हैं, वो भी रूह है। जिब्राइल अमीन को भी रूहुल अमीन कहा गया, वो भी रूह है। और वही को कुरान करीम में रूह कहा गया, ठीक है, वही इलाही को रूह कहा गया। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे जो मुराद है रूह से वो वही है। तो अल्लाह ताला वही को डालता है अपने हुक्म से जिस पे वो चाहे अपने बंदों में से, यानी कोई इतराज नहीं कर सकता कि इनके ऊपर क्यों वही आई, इनको क्यों पैगंबर चुना गया। वो तो सोचते थे ना किसी बड़े आदमी को चुना जाए, इसका मतलब है किसी का कोई एतराज करने का, किसी को कोई जेब नहीं देता, उसके लायक नहीं है कि वो एतराज करे अल्लाह ताला के फैसले पे। और सिर्फ ये नबुवत के फैसले के बारे में आप ना सोचेंगे, क्योंकि हम तो इतराज नहीं करते, हम तो कहते हैं कि ठीक है, हम तो उनको नबी मानते हैं, लेकिन हम और अल्लाह ताला के फैसलों में इतराज करते हैं। फलां की शक्ल ऐसी क्यों है, फलां का कद इतना क्यों है, फलां को इतने पैसे क्यों नहीं मिले, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गए, उसकी औलाद अच्छी क्यों निकल आई, उसको क्यों तरक्की मिल गई, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। हम एक फैसले पे इतराज नहीं करते, बाकियों पे इतराज कर रहे हैं तो ठीक हो गया वो। हम कहते हैं मेरा कद इतना छोटा क्यों है, मेरी आंखों का कलर ऐसा क्यों है, मेरी शादी अच्छी जगह पे क्यों नहीं हुई, सब मेरे घर में ये बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, सब अल्लाह के फैसले हैं, वो जो चाहे फैसला करे। चाहे किसी को नबुवत दे चाहे नहीं दे, नबुवत के लिए किसको चुने ये अल्लाह जानता है। लियुनजिरा यौम तलाक, ताकि वो खबरदार करे मुलाकात के दिन से, ताकि वो मुलाकात के दिन से खबरदार करे, यानी अल्लाह ताला ने इसलिए पैगंबर को भेजा ताकि पैगंबर जाके लोगों को इस दिन कयामत के दिन की मुलाकात के बारे में खबरदार कर दे। सबसे एक बड़ा अहम काम जो पैगंबर के जिम्मे था, नजीर और बशीर होना, बशारत भी देते थे और इंतजार भी करते थे। तो वो दिन जो यौम तलाक है, तलाक मैंने जैसे आपको बताया मुलाकात का दिन, किससे मुलाकात होनी है आप खुद सोचे, हमारी तो मुलाकात पुराने लोगों से भी होगी जो दुनिया से जा चुके, उनसे तो मुलाकात होगी, लेकिन अल्लाह ताला से भी मुलाकात का दिन है ये, अपने आमाल से भी मुलाकात का दिन है ये। इंसान अब जो आमाल कर चुका है उनसे उस दिन मुलाकात करेगा, वो उसको मिलेंगे वो आमाल उसके। और इसी तरह जो भी किसी की इबादत करता था, आबिद और माबूद की मुलाकात, फरिश्तों की इंसानों के साथ मुलाकात, कभी तो नहीं हमने फरिश्तों को देखा, आसमान वालों की जमीन वालों की मुलाकात हो, जालिम और मजलूम की मुलाकात, तो ये मुलाकातों का दिन भी है। अल्लाह ताला ने कयामत के दिन का एक ये भी नाम बताया, क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं, यौम तगाबुन, यौम तलाक, यौमुल हसरा, यौमुल कियामा, कियाम का दिन, खड़े होने का दिन। तो आगे यौमुल आजिफा आ रहा है, ये भी एक कियामत का नाम है, यौमुल हिसाब भी है। तो बहुत सारे नाम कयामत के दिन के आते हैं और मुलाकात का दिन भी है। कैसी मुलाकात होगी, यौमहुम बारिजूना, जिस दिन वो जाहिर होंगे, ला यख्फा अलल्लाह मिनहुम शई, नहीं छुपी होगी अल्लाह पर उनमें से इनकी कोई भी चीज, इनकी कोई भी चीज अल्लाह ताला से छुपी नहीं होगी, इनकी कोई भी चीज अल्लाह ताला से, चाहे वो दिल के हाल है, चाहे वो अमल है, चाहे वो कोई भी, हर चीज सामने होगी अल्लाह ताला के सामने, तो आज भी है, लेकिन आज हमें एहसास नहीं होता। उस दिन सबके सामने जब ये आ जाएगा तो फिर सब खुला होगा, यानी इंसान नंगा होगा, जिस्मानी तौर पे भी नंगा होगा और उसका सारा हाल भी नंगा होगा, यानी कोई हाल छुपा रह ही नहीं जाना। अल्लाह अकबर, इंसान को खुद भी याद नहीं होता उसके क्या अमल है, उसके ऊपर खुद भी जाहिर नहीं होता अपना अमल, इसलिए कि जो पीछे भूल गए, जो पिछले साल किया था, जो 10 साल पहले किया था, 20 साल पहले किया था, कुछ याद ही नहीं। लेकिन उस दिन इंसान अपने सामने पाएगा, और अल्लाह ताला के आगे तो हर चीज वैसे ही खुली हुई है। लीमनिल मुल्कुल यौम, उस दिन कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, पूछा जाएगा, किसकी है बादशाहत आज के दिन, बादशाहत किसकी है। आपको पता है ये हदीस सूर वाली हदीस में भी आती है कि अल्लाह अज़्ज़वजल जब तमाम मखलूक के रूह कब्ज कर लेगा तो उसके सिवा कोई भी नहीं बाकी होगा, ना कोई फरिश्ता, ना कोई भी नहीं, उस वक्त वो 3 दफा फरमाएगा, लिमनिल मुल्क लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। तो उस वक्त की भी, उस हदीस में भी आता है और यहाँ पे भी आता है। तो इब्ने अब्बास से मरवी है कि कयामत के कायम होने के बाद एक मुनादी निदा करेगा कि लोगो कयामत आ गई है, जिसको मुर्दे सब सुनेंगे। सोचें कि एक मुनादी करेगा, लोगो कयामत आ गई है, तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नजूल फरमाए और कहेगा लीमन इल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, सिर्फ एक अकेले अल्लाह की। और इतने हशर के मैदान में इतनी मखलूक खड़ी भी है, और उस वक्त आप सोचते होंगे कि कितना शोर होगा, कितना हंगामा होगा, कितना क्या होगा, नहीं, खामोश, सब खामोश, और सब ये सुनेंगे किसकी बादशाहत है। बड़े बड़े बादशाह खड़े हैं, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को क्या समझते थे, जालिम, जाबिर, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी पूरी जोर लगा लिया, कुव्वत वाले थे दुनिया में, लोग उनके सामने थर थर कांपते थे, आज वो थर थर कांप रहे हैं। अलियोम तो जजाकुल्लु नफ्सिन बीमा कसबत, आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को। तो ये कोई मुनादी कह रहा होगा आज के दिन बदला दिया जाएगा, या फिर वैसे ही ये बात यहाँ पे है कि आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को उसने जो कमाई की। ला जुल्म अल्यौम, आज कोई जुल्म नहीं होगा। इन अल्लाह सरियुल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द लेने वाला है हिसाब। जुल्म क्या होता है? जुल्म यह कि किसी के ऊपर किसी ने किया भी नहीं है उसके ऊपर डाल दिया। जुल्म यह कि किसी ने थोड़ा किया लेकिन उसको सजा ज्यादा दे दी। जुल्म यह कि किसी ने नेकी की थी लेकिन आज उसकी नेकी नजर ही नहीं आ रही, है ही नहीं है कहीं। जुल्म ये भी जुल्म है कि उसकी किसी और की बुराइयां लेके उसके ऊपर डाल दी जाए, यानी करा किसी ने और भरा को भरे कोई और, ये सब जुल्म है, ये सब के सब जुल्म है। तो उस दिन कोई भी जुल्म नहीं होगा। वह अंधेर हूं, और अल्लाह ताला सरियुल हिसाब है, यानी जल्द लेने वाला हिसाब, यानी अल्लाह ताला के लिए हिसाब लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। लगता है ऐसे है ना कि सारी मखलूक खड़ी हुई है, कैसे हिसाब होगा, इतनों का हिसाब कैसे होगा? अल्लाह ताला के लिए सबका हिसाब लेना ऐसे है जैसे एक का हिसाब लेना, उसको हिसाब चुकाने में देर नहीं लगेगी। बल्कि कुछ लोग तो बहुत पहले ही अपने जन्नत में जाके भी, कैलूला के वक्त तक अपनी जन्नत में जाके भी बैठ गए। अल्लाह, दुनिया में अदालतों में जब मुकदमे चलते हैं तो कैसे होते हैं? अरसा लग जाता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, कोई मर ही जाते हैं, तब जाके फैसले आते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा नहीं। ये भी एक जुल्म है कि इंसान को इंसाफ मिलते मिलते इतनी देर लग जाए, वहां पे ऐसा भी नहीं होगा, जल्दी हिसाब हो जाएगा। अल्लाह हू अकबर। और जल्द हिसाब का वक्त भी आने वाला है, इसी का आगे है। वह अंजिर हुम योमल आजिफा, और खबरदार कीजिए उनको उस दिन से जो करीब आ जाने वाला है, जो करीब आ लगेगा, यानी करीब आने वाला, यानी जो चीज देखे ना चल पड़ी हो वो समझ में आ गई है। योमल आजिफा क्या है? करीब का दिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना हुम यरौना हु बाईदा व नराहु हु करीबा, वो इसको दूर समझते हैं, हम इसको करीब कहते हैं। ये कि करीब ही है वो दिन, हमें क्यों दूर लगता है? मैं तो उठा के रखा हुआ ना कि पता नहीं जब आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तरह वाले ना से हिसाब हो मम भी गफलत मुआरिदून, लोगों के हिसाब का बहुत करीब आ गया, वो गफलतों में पड़े। तो कयामत करीब है, अगर वो कयामत नहीं भी आ रही तो मौत तो करीब है ना, वो भी तो कयामत है, वो छोटी कयामत है। जिसकी मौत आ गई उसकी कयामत शुरू हो गई। तो इनको डरा दें उस दिन से जो करीब आ लगा है। कितनी अल्लाह ताला की इंसान के साथ खैर ख्वाही है और मोहब्बत का मामला है कि इनको उस दिन से डरा दो। पैगंबर भी इसलिए भेजा, लियुनज़िरा यौमत तलाक, उस दिन क्या करोगे जब तुम सब खड़े होगे अल्लाह ताला के सामने, तुम्हारी कोई चीज छुपी नहीं होगी और किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, अपना ही भुगतोगे, अपना किया हुआ ही भुगतोगे, तो फिर क्या करोगे? जब कोई मुजरिम भाग नहीं सकेगा, कोई छुप ना सकेगा, कोई पनाह गाह ना मिलेगी, तो वो दिन ऐसा होगा, इजल कुलूब लदल हनाजिर, जब दिल गले में आ रहे होंगे, इतनी घबराहट ज्यादा होगी कि दिल ऐसा लगा होगा उछल के गले के अंदर फंस गया, ना नीचे जाएगा और ना बाहर ही निकल आए कि मौत आ जाए। कादिमीन, गम से भरे होंगे, इतना गम होगा, हम किस बात का, आए कुछ नहीं किया, आए वो दिन आ गया, आए हमने क्या कर दिया, हम किस मौज मस्ती में और इसमें दिन गुजार दिए जिंदगी के। आज तो कहते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, आज का ये नारा है ना। उस दिन गम से दिल भरा होगा कि खाते पीते और मजे ही करते रहे और इसी में जिंदगी गुजार के आ गए, हमने सोचा ही नहीं। और दूसरा माना इसका खामोशी का भी है कि गम से भरोंगे लेकिन खामोश है। आप देखें, वैसे इंसान दुनिया में गम से भरा हो तो चीखे मारता है, चीखे मार मार के आसमान सर पे उठा लेता है कि मेरा गम, जितना ज्यादा गम होता है उतनी चीखता है जोर जोर से, लेकिन वो कैसा दिन होगा कि एक हम सो गए, बस सिर्फ सांस की आवाज, इतनी मखलूक है लेकिन कोई आवाज नहीं है, कोई दूसरे से कह नहीं रहा हाय मुझे क्या पता था, हाय ऐसे हो गया, अच्छा तुम्हारा क्या हाल है, अच्छा तुम्हारा कुछ बन सकता है या नहीं, कुछ डिस्कशन ही हो जाए। दुनिया में कितनी डिस्कशंस होती हैं, जरा सा हादसा हो जाए फौरन डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, फौरन ऐसे प्रोग्राम आने लगते हैं जिसके अंदर आपस में तजिए हो रहे हैं जी। वहां पे कहाँ गए तजिया निगार, कहाँ गए डिस्कशन करने वाले, खामोशी है। और हाल ये है कि गम से भरा हुआ है दिल, और खौफ का आलम यह है कि ऊपर आ रहा है दिल, सांस तेज चल रही है, कितना दिल दहला देने वाला मंजर है। दुनिया में कह देते हैं कमजोर दिल हजरात ना देखे, क्योंकि यहाँ ये बच्चे ना देखें क्योंकि ये जो ये देख नहीं सकते, लेकिन वहां पे तो सब खड़े होंगे। वो दिन है जो बच्चे को बूढ़ा कर देने वाला, कई फतकूना इन कफर तुम यो मैं जालू बिलता नशीबा, तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे अगर तुम उस दिन को नहीं मानते जो दिन बच्चे को बूढ़ा कर दे, कैसे बचाओ करोगे। मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफी युता, जालिमों का कोई जिगरी दोस्त नहीं होगा, ना कोई सिफारशी होगा जिसकी बात मानी जाए। आज जालिम अगर दंदनाता फिरता उसको कोई पूछने वाला नहीं, आज उसके साथ लोग डर के मारे उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं लेता, आज उसके साथ लग जाते हैं कि कोई ये जोरावर है, उस दिन उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसके जिगरी दोस्त भी गायब होंगे, सिफारशी तो कोई होगा ही नहीं जिसकी कोई बात मानी जाए। जुल्म किसी किस्म का भी हो, जुल्म उस दिन अंधेरे बन जाए, जुल्म चाहे बाप ने अपनी औलाद पे किया हो, औलाद ने वालदेन के साथ किया हो, बहन भाइयों ने आपस में जुल्म किए हो एक दूसरे पे, हक मार के या दूसरों पे ज्यादतियां करके या दूसरों को कुछ सुना के या दूसरों की जिंदगी अजीरन करके जो भी जुल्म किया किसी ने, वो उस दिन को ना भूले जिस दिन जालिम का कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। हम तो जब जालिम का सोचते हैं कोई फिरौन ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में जो जुल्म करते हैं दूसरों के साथ उनके बारे में क्या है, हम अपनी जिंदगियों में दूसरों की जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, हम अपनी बातों से अपने रवैयों से अपने मामलात से दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, क्या वो जुल्म नहीं है। कोई रोता है हमारी वजह से, किसी के आंसू बहते हैं हमारे रवैयों की वजह से, क्या ये जुल्म नहीं है। ना हक किसी के ऊपर ज्यादती करना, ना हक किसी को सताना, क्या ये जुल्म नहीं। अब इस दिन देखो, आज जालिम के चाहे कितने ही चाहने वाले और कितने ही लोग उसके साथ खड़े हो जाएं, उस दिन कितना अकेला होगा वो, ये कौन बर्दाश्त कर सकता। तो जुल्म करने से बचो, और कोई बेहोश नहीं हो सकता वहां, किसी को हार्ट अटैक भी नहीं हो सकता कि अब क्या करूं मुझे तो दिल का दौरा पड़ गया। यहाँ पे तो लोग प्रिटेंड भी कर लेते हैं बेहोशी का, आए कुछ जरा सा हो गया कि अपनी मेरी तो तबीयत खराब हो गई, ताकि कोई कुछ कहे ही ना, उस दिन तो कोई नहीं कह सकता मेरी तबीयत खराब हो गई, आए आए मेरी तो जान निकलने लगी मुझे बचाओ, आए मैं तो गिरने लगी हूँ गिरने लगी हूँ कोई मुझे पकड़े, कोई नहीं कह सकता। खड़े में सब दम सादे, सांस चल रही है, दैट से कोई हरकत नहीं, सोचे जर कितनी उनके ऊपर खौफ और कितनी दहशत होगी उनके ऊपर कि जो उनका यह हाल हो गया होगा, वरना वो मौका तो ऐसा जिसमें चीख चीख के खत्म हो जाए, लेकिन खामोशी है और दिल काबू में नहीं। या आलमु खाइनतिल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, उस दिन जो सबसे बारी खयानत है ना, वो है आंख की खयानत, सबसे छोटी खयानत जिसका किसी को पता ही नहीं चलता, किसने आंख उठाई किस तरफ देखा कोई नहीं जानता, साथ बैठा होता है, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती, आंखों ही आंखों में मैसेजेस हो जाते हैं, एक आंख का इशारा होता है किसी की गर्दन उड़ा दी जाती थी पहले, तो आंखों आंखों में तो बहुत कुछ हो जाता है, वो आंख की खयानत कोई और नहीं जानता। इसको अब्दुल्ला बिन मसूद ने ऐसे भी बयान फरमाया कि वो बंदा जो किसी के घर में जाता है, वहां कोई खूबसूरत लड़की है वो आ जा रही है, तो ये कल अच्छी से उसको देखता है, जहां किसी की नजर पड़ गई नजर फेर ली, जब मौका मिला नजर उठा के देखी, आंख की खयानत ये, और दिल में क्या बात आ रही है, वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह उसको भी जानता है, दिल में वो ये सोच रहा है कि अगर मुमकिन हो तो इसके जो छुपे हुए बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मैं देख लूं किसी तरह, ये भी अल्लाह जान रहा है। इसी तरह देहा कहते हैं कि इससे मुराद आंख मारना है, इशारे करना है, बिन देखी चीज को देखी भी या देखी भी चीज को अनदेखी बताना, तो मैंने तो देखा ही नहीं, हालांकि देखा हुआ है, तो ये खयानत है आंखों की, या मैंने देखा था, मैंने तो खुद देखा ऐसा हो रहा है और देखा नहीं है, ये भी खयानत है आंखों की। तो जितनी खयानतें आंखों की अल्लाह ताला खुद को उनका भी पता है, उसने हिसाब लेना है जो आंखों की खयानत को भी जानता है, तो और क्या बात रह गई जो कोई भी नहीं दुनिया में जानता। और इसके बाद जो दिल में छुपा हुआ है, यानी सीने के अंदर क्या छुपा होता है, इरादे, नीयतें और ख्यालात, वसवास, बदगुमानियां, पता नहीं क्या क्या संभाल संभाल के रखा हुआ है दिलों के अंदर, वो सब कुछ जानता है। या अच्छा गुमान भी, किसी के बारे में अच्छा गुमान, उसको तो नहीं पता कि आप उसके बारे में अच्छा गुमान रखते, लेकिन अल्लाह ताला उसका भी अजर दे देगा। ये सब छुपी हुई चीजें, जो इतनी छुपी हैं वो उनको भी जानता है, तो बाकी क्या रह गया फिर, बाकी तो किसी चीज को भी ना समझो कि जो छुप सकेगी, अगर ये नहीं छुप सकती। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक, और अल्लाह फैसला करता है हक के साथ, तो उस दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा हक के साथ, इसलिए कि वो ही फैसला कर सकता है हक के साथ जो इतना बारीक बीन है। अल्लज़ीना यदउना मिन दूनी, और जिनको तुम पुकारते हो, जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, ला यकदूना बिशहीन, वो तो नहीं कुछ फैसला कर सकते, इसलिए कि ना उनको कुछ पता है, ना वो किसी चीज को जानते हैं, कोई चीज उन्होंने देखी नहीं, कौन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं, वो इंफॉर्मेशन के बेस पे ही फैसले होते हैं ना, उनको क्या पता, या तो भूत है या कोई इंसान भी है, कोई जिन है, कोई भी है, वो नहीं जानते। दिलों के अंदर के भेद कौन जानता है, आंखों के सामने कौन जानता है, लेकिन अल्लाह वो जो फैसला करने वाला है, इन अल्लाह हुवा समीउ अल बसीर, ये नहीं कि उसके पास सिर्फ गवाह है, वो खुद भी देख भी रहा था और सुन भी रहा था, इसलिए वो हक के साथ फैसला कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो ये भी अल्लाह ताला की एक तौहीद का एक दलील है कि चूंकि वो खाइनतुल आयुन को भी जानता है, वो जो सीनों में छुपे हुए भेद हैं उनको भी जानता है, वो जो खुद देखता है और सुनता है, वो ही उस दिन फैसले कर सकता है। इसके अलावा तुम बताओ, जिनको तुम मानते हो, क्या वो भी ये कुदरत रखते, नहीं रखते। तो उसकी तौहीद का बयान भी हो गया यहाँ पे, और उस दिन उसकी मालिक यौमिद्दीन वो ही होगा, उसकी ताकत होगी उस दिन, उसकी कुव्वत होगी उस दिन, उसकी कुदरत का इजहार हो रहा है यहाँ पे, और इंसान की बेबसी का इजहार हो रहा है कि कैसे खड़ा होगा, ताकतवर से ताकतवर इंसान की भी हालत क्या होगी उस दिन, ये सब के हाल होंगे कि कलेजा मुंह को आ रहा होगा जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, तो इंसान इस दिन की तैयारी करे, इसी दिन से डराने के लिए अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा, इंसान अपने दीन को खालिस कर ले सिर्फ अल्लाह के लिए, चाहे किसी को भी बुरा लगे, कितना ही बुरा लगे, खालिस अल्लाह के लिए इबादत करे, अपनी तौहीद को खालिस करे, अल्लाह को मानने में एक हो, उससे दुआएं करने में एक हो, एक अल्लाह को मानना, तौहीद में अगर गलती निकल आई तो फिर तो बिल्कुल ही इंसान गया। तो उस सख्त दिन से अल्लाह ताला ने बचाया, बचाने के लिए ये आयात हम तक पहुंचाई है कि हम इनसे सबक लें, और देखो कैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी तुम्हें ईमान वालों के लिए और तौबा करने वालों के लिए, अल्लाह की तरफ पलटने वालों के लिए और सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करने वालों के लिए दुआओं पे लिए लगा दिया, कैसे वो सबसे पहले इंसान के अबाव बाप दादा होते हैं या माँ बाप होते हैं, पहले उनके लिए, फिर उसके बाद जिंदगी में शादी होती है तो जौज के लिए, उसके बाद औलाद होती है तो फिर औलाद के लिए, देखो इस कितने सीक्वेंस से वो दुआ मांग रहे हैं ना। तो उसी तरह जैसे कि दुनिया में इंसान आता है तो जो रिश्ता पहले होता है उसके बाद होता है फिर उसके बाद होता है, अल्लाह ताला इन आयात से हमें सही सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت سنة.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير